نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد ميزره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت اور مقدس مہینہ عنایت فرمایا جس کے تقریباً سبھی ایام پورے ہو چکے، ایک اور دو دن گزرنے کے بعد یہ ماہ مبارک رخصت ہو جائے گا اور پھر وہی دیگر ایام کی طرح سے زندگی گزرنے لگے گی. یہ بابرکت ساعتیں اور مقدس لمحات ختم ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو عموماً ہماری آبادیوں میں، مساجد میں اور محفلوں میں استقبال رمضان کے تعلق سے بیانات اور تقاریر ہوتی ہیں جن میں سمجھایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں کیسے عبادت کرنی ہے اور کس طریقے سے اس ماہ کو گزارنا ہے. لیکن جب رمضان رخصت ہونے لگتا ہے تو وداع رمضان کے تعلق سے گفتگو بہت کم ہوتی ہے. رمضان رخصت ہو رہا ہے اس لیے اس موقع پر ایسی گفتگو کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جس میں اس پورے ماہ کا جائزہ، عبادات کے طریقہ کار کا جائزہ، اپنی کمی اور کوتاہی پر نظر ہو جائے. انسانی زندگی کا ایک معمول ہے، وہ کوئی بھی کام کرے، بزنس کرے یا جاب کرے، وہ اپنے بزنس کا یا اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے، اس کا حساب و کتاب کرتا ہے تاکہ نفع اور نقصان کو سمجھ سکے اور جان سکے کہ اس بزنس میں یا اس کام میں ہمیں نفع ہوا ہے یا ہمارا وقت ضائع ہوا ہے اور ہم نقصان میں گئے. تو اسی طرح سے ہمیں گزرتے ہوئے ان ایام میں اپنے اس پورے مہینے کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میسر ہوا، اس ماہ مبارک میں ہم نے کچھ پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم نے کچھ نیک اعمال اور اجر و ثواب کے کام کچھ درج کرائے، یا یہ ماہ جو برکتوں والا ماہ تھا یوں ہی گزر گیا، یہ اوقات یوں ہی ضائع ہو گئے. اس لیے ہمیں اس گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہنے کے ساتھ ساتھ جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، جو غفلت ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں جائزہ لینے سے پہلے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں وہ کیا کیا انعامات ہیں اور وہ کتنے انعامات ہیں. یوں تو اجمالی طور سے عموماً یوں ہی بیان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کے انوارات، اس کی برکات बारिश की तरह बरसती रहती हैं। लेकिन अगर उसको तफसील में जाकर के समझा जाए, उसकी डिटेल में जाके समझा जाए, तो इसकी अहमियत और अजमत और बढ़ जाती है। अहादीस शरीफा में माह रमजानुल मुबारक के बारे में अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो चीजें बयान की हैं और जो जो चीजें हमारे सामने रखी हैं, वो अल्लाह ताला के इनामात हैं। जब माह मुबारक शुरू होता है तो इस माह का पहला जो अशरा है वो रहमत पर मुश्तमिल, उसमें रहमत आम कर दी जाती है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत पर मुश्तमिल, उसमें मग़फ़िरत आम कर दी जाती है। तीसरा अशरा इत्कुम मिनन्नार, जहन्नम से छुटकारे का ऐलान, जिसमें जहन्नम से छुटकारा आम कर दिया जाता है। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम। फिर इस माह मुबारक में इफ्तारी रोजा, इस माह मुबारक में जब बंदा रोजा रखने के लिए सहरी खाता है, तो सहरी का जो मामूल रखा गया, उसमें जो अल्लाह की जानिब से खैर और बरकत रखी गई, वो खैर और बरकत वो भी अल्लाह की जानिब से एक इनाम है। और पूरा दिन जब बंदा सहरी खा करके रोजे की हालत में गुजारता है, तो उसके नेक आमाल का अजरो सवाब बढ़ा दिया जाता है। आपने सुना होगा कितना अजरो सवाब बढ़ा दिया जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर। और इसी तरह से जब इफ्तारी का वक्त होता है, तो इफ्तारी के वक्त अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और इफ्तार करने वालों के लिए अल्लाह ताला की जानिब से दो खुशखबरियां, लिसाइम फरहतान, दो खुशखबरियां उसके लिए सुनाई गईं। एक खुशखबरी तो ये कि उसकी दुआ कबूल हो जाती है, कोई बीच में आड़ और पर्दा और वास्ता नहीं होता। और दूसरी खुशखबरी ये कि भूखे रहने की वजह से जो मुंह में एक आम किस्म की बू पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला के यहां उसका दर्जा मुश्क से भी बढ़ा हुआ और उससे भी ज्यादा वो पसंदीदा, ये भी अल्लाह ताला का एक इनाम है। और जब रात शुरू होती है, तो रात में अल्लाह ताला की जानिब से मलाइका और फरिश्ते फैल जाते हैं और निदा लगाते रहते हैं कि है कोई मांगने वाला, रोजी का तलबगार। ये अल्लाह ताला के इनामात की एक तफसील है, जिसको अगर सुनाया जाने लगे तो एक लंबा वक्त दरकार है। इसी के साथ साथ इस माह में अल्लाह ताला ने बंदों के अजर व सवाब को बढ़ाने के अलावा कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो इस माह के अंदर ही मुमकिन है, इसके अलावा में मुमकिन नहीं है। मसलन एक एतिकाफ का अमल जो अल्लाह ताला ने रखा, वो रमजान के महीने में ही मुमकिन है और इसी में उसका अजर व सवाब है। रमजान के महीने के अलावा अगर दीगर अय्याम में एतिकाफ किया जाए, तो उसका वो मकाम, वो दर्जा और वो अजर व सवाब नहीं है। इसी तरह से शबे कद्र इनायत फरमाई, जिसकी इबादत हजारों महीनों से बेहतर और अफजल है। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने इस माह में तरावीह की एक मजीद इबादत इनायत की। ये तरावीह की जो इबादत है, इसकी हकीकत क्या है और ये अल्लाह ताला का एक इनाम है, ये कैसे इनाम है? इसके इनाम होने को समझिए। बंदा अपने अल्लाह ताला के करीब होता है दुआ मांगने की हालत में, नमाज पढ़ने की हालत में, तिलावत करने की हालत में, लेकिन रिवायात में लिखा है कि अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब और अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा कुर्ब जो इंसान को हासिल होता है, वो सजदे की हालत में होता है। जब बंदा सजदा करता है और सजदा करते हुए अपने सर को जमीन पर रख देता है और फिर अल्लाह ताला की तस्बीह अपनी जबान पर लाता है, वो कैफियत और वो वक्त होता है जिसमें बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है। और उस वक्त उसकी तस्बीह और उसकी दुआ और उसकी निदा और अल्लाह ताला की समाअत के माबैन कोई फासला और कोई वास्ता नहीं होता। अल्लाह ताला डायरेक्ट उसको सुनते हैं। अल्लाह ताला के और बंदे के उस पुकार के दरमियान में कोई वास्ता नहीं होता। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो नमाज तरावीह की एक नेमत अल्लाह ताला ने इस माह में दी, ये इतनी बड़ी नेमत है कि हर एक रकात में दो सजदे हैं। इस तरह से एक दिन के अंदर 40 सजदे इजाफी अल्लाह ताला की जानिब से मिले। यूं तो दीगर नमाजों के सजदे अगर जोड़े जाएं, फजर के अंदर 4 रकात आप पढ़ते हैं, 2 सुन्नत और 2 फजर, तो इस तरह से 8 सजदे हो जाते हैं। और जोहर में 12 रकात आप पढ़ते हैं तो 24 सजदे हो जाते हैं, और असर में 4 रकात पढ़ते हैं तो 8 सजदे हो जाते हैं, मगरिब में 7 रकात आप पढ़ेंगे तो 14 सजदे हो जाते हैं, और ईशा में 17 रकात अगर आप पढ़ेंगे तो 34 सजदे हो जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के अल्लाह ताला ने बंदे को अपने करीब बुलाने के 83 मौके दिए, 83 सजदे बंदे पर रखे कि वो 24 घंटे में 83 मर्तबा अल्लाह ताला से अपनी राज और नियाज की बातें, अल्लाह ताला से अपनी पसंदीदा बातें, अपनी जरूरत की बातें, अल्लाह ताला को राजी करने की बातें वो 83 मर्तबा कर सकता है। तो 24 घंटे में 83 मर्तबा अल्लाह ताला ने ऐसा मरहला रखा। लेकिन रमजानुल मुबारक के अंदर जो ये तरावीह की नमाज बतौर इनाम के अल्लाह ताला ने बढ़ाई, एक ही दिन में इसमें 40 सजदे इजाफे के तौर पर आ गए, यानी 40 मौके बंदे को ऐसे मिले इजाफी और एक्स्ट्रा तौर पर कि वो 40 मर्तबा अल्लाह ताला के बहुत नजदीक हो सकता है, अल्लाह ताला से अपने राज और नियाज की बात कह सकता है, अल्लाह ताला के इतने करीब हो सकता है कि उससे ज्यादा कुर्बत का दुनिया में रहते हुए इम्कान नहीं है। ये अल्लाह ताला का इनाम है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने शबे कद्र दी और नमाज तरावीह दी, एतिकाफ का मौका दिया और अजर सवाब में इजाफा कर दिया, रहमत में इजाफा कर दिया, मगफिरत में इजाफा कर दिया। अब हमें इन गुजरते अयाम के साथ साथ अपने गिरेबान में झांक करके जायजा लेने की जरूरत है कि जो अल्लाह की जानिब से ये इनामात मिले, क्या हमने इन इनामात की कदर की, क्या हमने इन इनामात से फायदा उठाया, क्या हमने इन इनामात से इस्तेफादा किया, या यूं ही गफलत में हमने इन मवाके को, इन लम्हात को और इन इनामात को जाय कर दिया। हमें जायजा लेने की जरूरत है। अगर इसमें अब तक कोताही हुई है, अगर कोई भी एक मौका छूट गया है, अगर कोई भी एक मौका गफलत में गुजर गया, तो जो थोड़ा सा वक्त बाकी है उस थोड़े से वक्त में इस गफलत की तलाफी की जा सकती है। इस गफलत के ऊपर अल्लाह ताला के हुजूर इस्तिग़फार और तौबा करके अपनी इस गफलत की माफी मांगी जा सकती है। इसलिए जायजा लेने की जरूरत है। और जायजा लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं। इसलिए हमें रमजानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को देखते हुए अपने तरीक़ेकार पर नजर करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमजानुल मुबारक में मामूलात क्या थे, आपके मामूलात तो बहुत तफसील से बयान किए गए हैं कि आप रमजानुल मुबारक को कैसे गुजारते थे, मैंने रिवायत पढ़कर के आपको सुनाई, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन जो आपकी चहेती बीवी है, वो आपका रमजानुल मुबारक का मामूल जिक्र करती हैं और बतलाती हैं कि इजा दखल रमजान तगैर लौनु व कसरत सलातु व बतहल फि दुआ व अशफक, कि जब रमजानुल मुबारक आ जाता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग तब्दील हो जाता था और नमाजों में इजाफा हो जाता था, दुआओं में गिरियाओं जारी फरमाते थे और खौफ तारी हो जाता था। इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार कैफियतें और चार हालतें जिक्र की गई हैं। सबसे पहली हालत तो जिक्र की गई कि आपका रंग तब्दील हो जाता था, यानी रमजानुल मुबारक के आने के वक्त में आप अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के लिए और अल्लाह की इबादत को अंजाम देने के लिए ऐसे मुतफक्किर होते थे, आपके ऊपर फिक्र इतनी सवार हो जाती थी और इतनी फिक्र अपने ऊपर आप ओढ़ लेते थे कि आपका रंग तब्दील हो जाता था। जब आदमी किसी काम में ज्यादा फिक्रमंद हो जाता और उसका ज्यादा एहसास अपने ऊपर करने लगता तो उसके चेहरे मोहरे से, उसके जिस्म जुस्से से, उसकी रंगत से लोगों को अंदाजा होने लगता, सवाल करने लगते क्या फिक्र है भाई। तो इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत बतलाई गई कि आपका रंग तब्दील हो जाता था और आपकी नमाजों में इजाफा हो जाता था और आप नमाज में दुआ में गिरियाओ जारी फरमाते थे और आप पर खौफ तारी रहता था। ये चार हालतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई। नबी से मोहब्बत का दम भरने वालों को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में झांके, गौर करें कि क्या हमारे अंदर भी ये चार बातें पैदा होती हैं। जब रमजान आता है तो क्या उसकी अंदर इबादत करने, अल्लाह को याद करने, तौबा और इस्तिगफार करने के लिए हम ऐसे फिक्रमंद हो जाते हैं कि हमारा रंग भी मुतासिर हो जाए, हमारा रंग भी तब्दील हो जाए, हमारे जिस्म जुस्से पर, हमारे रंग पर भी ऐसे असरात जाहिर होते हैं। यकीनन ऐसी सूरत नहीं है। क्या हमारी नमाजों में इजाफा हो जाता है? क्या दुआ करने में हम रोने में और गिरिया जारी में मसरूफ होते हैं? क्या हमारे ऊपर खौफ और गिरिया तारी हो जाता है? इसी तरह से दूसरी रिवायत कि जब रमजान का अखीर अशरा शुरू हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को शब्बेदारी करते, अहया लैला, रात को शब्बेदार होते, जागते, रात को जिंदा करते, वह आई कजा अहला, और अपने घर वालों को जगा देते, अपने घर वालों को भी बेदार करते, वशद्द मिजरा, और अपने तहबंद को मजबूती से और सख्ती के साथ बांध लेते थे। आपकी ये तीन कैफियतें बयान की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल को आईना बना करके, रोशनी बना करके हमें अपने आमाल का जायजा लेना चाहिए। हम हर हर चीज का मुहासबा करते हैं, क्यों ना हम रमजानुल मुबारक की इन नेमतों को सामने रखकर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को सामने रखकर अपने इस रमजान का जायजा लें कि क्या ये रमजान हमारा नफे में है या इस रमजानुल मुबारक में हमने कुछ फायदा हासिल किया, अल्लाह ताला की जानिब से हमें इनामात मिले, इतने इनामात के मछलियां पानी के अंदर हमारे लिए दुआ पर मामूर कर दी गई कि वो रोजेदारों के लिए दुआ करें, तो क्या मछलियों की दुआ में हमारा भी हिस्सा है? फरिश्ते अल्लाह ताला की जानिब से रहमत लेकर के उतरते हैं, क्या उस रहमत में हमारा भी हिस्सा है? अल्लाह की जानिब से मगफिरत के फैसले हुए, क्या उस मगफिरत में हमारा भी हिस्सा है? तो इन तमाम चीजों का जायजा लें और जायजा लेकर के और जायजा लेकर के अगर कोई कमी, अगर कोई कोताही, अगर कोई लग्जिश हम अपने काम में, अपने मामूल में महसूस करें, तो ये जो एक या दो दिन बाकी बचा, इस आखिरी एक दिन में अल्लाह के हुजूर तौबा करके, इस्तगफार करके और अल्लाह ताला के हुजूर अपनी गलतियों पर, अपनी कोताहियों पर रो धो करके आइंदा के लिए अल्लाह तबारक व ताला से उन अय्याम का, उन इनाम का कद्र करने का पुख्ता वादा कर लें। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला के यहां माफी की और तौबा की बड़ी कद्र है। अगर कोई बंदा गुनाह करता, गलती करता, बार बार गलती करता और गलती करने के बाद फिर अल्लाह ताला के हुजूर वो तौबा कर लेता, फिर इस्तगफार कर लेता, अपनी गलतियों पर नादिम हो जाता है, इजाफा कर देते हैं, उसके दराजात भी बढ़ा देते हैं, उसके दराजात में बुलंदी पैदा कर देते हैं। आज के जमाने की जो सूरत हाल है, हम हर चीज में जायका और मजा तलाश करते हैं। आज आप देखते हैं आपके आजू में बहुत सारे होटल हैं, उन होटलों पर हमारे बच्चे और हमारे अहबाब जाते हैं, हाजिर होते हैं और फिर आता आया, बहुत मजा आया। हर चीज में मजा तलाशा जाता है, खाने पीने की चीजों में, प्रोग्रामों में, महफिलों में, कोई भी महफिल हो, कोई कॉमेडी की महफिल हो, कोई मूवीज हो, कोई भी चीज हो, किसी से गुफ्तगू आपने की तो आपस में गुफ्तगू करने के बाद आदमी जब तस्किरा उसका करते हैं, उसका आपस में एक दूसरे पर राय जाहिर करते हैं, तो उस राय का इजहार मजे की सूरत में किया जाता है कि वहां पर जो जलसा हुआ या महफिल हुई बहुत लुत्फ उसमें आया। तो दुनियावी चीजों में जब कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बेहतर लगती है, तो उसकी अच्छाई और उसकी बेहतरी का बयान उसके मजे की सूरत में जाहिर किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानी जायके और ईमानी मजे की खबर दी है कि कोई आदमी इस कैफियत में दाखिल हो जाए, उसकी ये हालत बन जाए, उसका ये मिजाज बन जाए, इज़ा सर्रत का हसनतु, कि नेकी और अच्छाई उसको खुश कर दे, और इज़ा साअत का सय्यतु, बुराई उसको नागवार महसूस हो, वजदा तअमल ईमान, उसने ईमान का मजा पा लिया, उसने ईमान का जायका पा लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के जायके की और ईमान के मजे की पहचान बतलाई। आज हर चीज में हम मजा ढूंढते हैं, क्या हमने अपने ईमान का जायजा लेकर के उसके मजे और उसके अंदर उमदगी की कैफियत को जांचा और परखा? मेरे मोहतरम भाइयों, हमें जैसे अपने ईमान की कैफियत को जांच करके, परख करके उसके मजे को समझना चाहिए, ऐसे ही रमजानुल मुबारक और रमजानुल मुबारक की जो इबादात हैं, इन इबादात का भी इस हवाले से हमें जायजा लेना चाहिए कि ये जो रमजानुल मुबारक गुजरा, इसके अंदर इबादात की मसरूफियत, तिलावत और इबादत की मसरूफियत इस दर्जे की हमारी रही कि यूं कहा जा सके कि इस रमजानुल मुबारक में तो मजा आ गया। ऐसी इबादत हमने की, ऐसी दुआ हमने की, ऐसी तिलावत हमने की कि लुत्फ आ गया। ये एक ऐसा पहलू है जो बहुत ही अफसोसनाक है कि इबादत का पहलू और जिक्र तिलावत का पहलू हमारी जिंदगी में बहुत कमजोर और गफलतों से भरा हुआ पाया जाता है। हम मजे का ताल्लुक सिर्फ खाने पीने की चीजों से, पहनने की चीजों से और ऐसी चीजों से समझते हैं जो इबादात के कबील से ना हो। हजरत सहाबाए किराम और अंबियाए किराम की जिंदगियों में हमें ये सबक मिलता कि इबादात में भी लुत्फ होता है,
عبادات میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، عبادات میں بھی مزہ ہوتا ہے۔ ہم اتنا ڈوب کر کے، اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اتنے انہماک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اتنی گہری توجہ کے ساتھ نماز میں مصروف ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ ذہن میں کوئی دوسری چیز کا تصور ہی نہ رہے، اللہ سے اتنے قریب ہو جائیں کہ صرف اللہ ہی پیش نظر ہو، اللہ ہی کا تصور ہو، اس کی رضا ہی پیش نظر ہو، کسی دوسری چیز کا تصور اور خیال ہمارے ذہن و دماغ میں نہ ہو، اس طریقے سے نماز ادا ہو تو کہا جا سکے گا کہ ایسی نماز
ہوئی جس میں لطف آ گیا۔ ایسے ہی روزہ اس طریقے سے انسان کا گزرے کہ صبح سے لے کر کے شام تک اس کے پیش نظر اللہ کی رضا مندی،
اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی خوشنودی اور اس کے اجر و ثواب کے علاوہ کوئی اور بات اس کے ذہن و دماغ میں نہ ہو، کوئی اور تصور اس کے ذہن و دماغ میں نہ ہو،
تو اس طریقے سے اگر روزہ گزرتا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزے میں مزہ آ گیا۔ تو ایسے ہی
ماہ مبارک کی بات کہ اس ماہ مبارک میں جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے
رکھی ہیں،
اپنی یاد کے جو مرحلے رکھے
ہیں، جو انعامات رکھے ہیں، جو افطار، سحری، شب قدر،
نماز تراوی، نماز تہجد اور دیگر سائد عبادتیں اس ماہ مبارک میں ہیں، ان کو بندہ اتنے انہماک سے، اتنے شوق سے،
اتنی رغبت
سے انجام دے کہ یوں کہا جا سکے
کہ رمضان مبارک میں لطف آ گیا
اور مزہ
آ گیا۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اگر کوئی
غلطی اور کوئی غفلت ہوئی ہے تو اس غلطی اور غفلت پر ندامت کی بھی ضرورت۔ رمضان المبارک میں حضرات صحابہ کرام کا یہ معمول اور یہ عمل ذکر کیا جاتا ہے کہ انہیں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے علاوہ کا خیال نہیں ہوتا تھا۔ یوں لکھا ہے مورخ نے کہ حضرات صحابہ کرام کے 6 مہینے تو رمضان المبارک کی تیاری میں گزرتے تھے، رمضان المبارک کے لیے، اس کو پانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا الى رمضان، اللہ تعالیٰ رمضان تک پہنچا دیجئے، اللہ تعالیٰ رمضان تک پہنچا دیجئے۔ حضرات صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت ان کے پیش نظر سب سے زیادہ اہم تھی، دنیاوی زندگی میں وہ زیادہ رہنے کی دعائیں، عمروں کے اضافے کی دعائیں ان کے معمولات میں نہیں ملتی کہ صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہوں ہماری عمر میں اضافہ ہو جائے، ہماری عمر بڑھ جائے، ایسی دعائیں ان کے معمولات میں نہیں ملتی۔ صرف یہ ایک رمضان کے بارے میں ایسی دعا ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت کہ آپ فرماتے تھے اللہم بلغنا الى رمضان، اور حضرات صحابہ کرام کے معمول میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ فرماتے تھے اللہم بلغنا الى رمضان۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان کو پانے کے لیے عمر کے اضافے کی اور عمر کی درازی کی دعا نبی پاک کے معمولات میں اور صحابہ کرام کے معمولات میں صرف یہی ملتی ہے۔ تو 6 مہینے تو ان کے اس طرح گزرتے کہ وہ رمضان المبارک کو پانے کی دعائیں کرتے رہتے، اور جب رمضان انہیں میسر آ جاتا، مل جاتا، اس میں مجاہدہ کہ اس کو وہ بسر کر لیتے اور رمضان المبارک رخصت ہو جاتا، تو پھر 6 مہینے ان کے اللہ کے حضور یہ دعا کرنے میں، یہ اس طریقے سے رو رو کر دعا کرنے میں گزرتے اللہم تقبل منا ھذا رمضان، کہ ہم سے اس رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ قبول فرما، اس رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرما۔ جب رمضان کے آخر ایام شروع ہوتے تو ان پر ایسی عجیب کیفیت طاری ہوتی کہ وہ یوں سمجھتے اور کوشش کرتے کہ ایک بھی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی عبادت کے بغیر خالی نہ رہ جائے، और रातों को दहाड़े मार मार कर रोते थे कि रमजानुल मुबारक चला जाएगा, ये बाबरकत साते खत्म हो जाएंगे, ये मुबारक घड़ियां खत्म हो जाएंगे। अब आइंदा बाबरकत साते, ये बाबरकत और मुबारक घड़ियां हमें मुयस्सर होंगी या मुयस्सर नहीं होंगी, इस तरीके से वो दहाड़े मार मार करके रोया करते थे। उन पे ऐसा एहसास और ऐसा गम तारी होता कि वो गम उनकी आंखों से छलकने लगता। रमजान के अखीर अय्याम में एक ताबई लिखते हैं कि अक्सर सहाबाए किराम के चेहरे और उनकी दाढ़ियां आंसुओं की वजह से तर रहती थी। वो बाजारों में चलते थे अपनी जरूरियात के लिए, घर से निकल के मस्जिद आते थे, मस्जिद से निकल के घर की तरफ जाते, तो उनके चेहरों पर जब नजर डाली जाती तो उनके चेहरे आंसुओं से तर रहते थे, आंसू बहते रहते थे। रमजानुल मुबारक के खत्म हो जाने के गम में, रमजानुल मुबारक के गुजर जाने के औकात में हमारे ऊपर भी ऐसा एहसास तारी होना चाहिए कि ये इनाम के लम्हात, ये मुकद्दस लम्हात, ये गुजर जाएंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने अजर व सवाब हर हर अमल का बढ़ा दिया है। ना मालूम आइंदा ये लम्हात मुयस्सर होंगे या मुयस्सर नहीं होंगे। हमारी कैफियत इसके बरखिलाफ है, इससे मुख्तलिफ है। जब रमजानुल मुबारक के आखिर अय्याम आते हैं तो हमारी जबानों पर अजीब अजीब जुमले आ जाते हैं। अरे दो दिन शैतान और बंधे, क्या हुआ? दो दिन की बात और है, एक दिन की बात और है। इस तरह के अल्फाज ईमान वालों की जबान पर आना मुनासिब नहीं है। एक बहुत बड़े ताबई हजरत वहब इब्ने मुनब्बह वो फरमाते हैं कि उन्होंने ईद के दिन चंद लोगों को देखा कि वो एक जगह पर खड़े हैं और आपस में हंस हंस के बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जैसा कि ईद के दिन हमारे मुस्लिम भाइयों का तरीका होता, इधर उधर खड़े हो जाते हैं, मस्ती करते हैं, अटखेली करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, जिसमें दीन और ईमान का भी कोई लाव और लिहाज नहीं रहता। तो वहब इब्ने मुनब्बह ने देखा कि चंद लोग खड़े हुए हैं और खड़े होकर के आपस में इस तरीके से हंस रहे। उन्होंने कहा कि ये जो लोग खड़े हैं, या तो इनके आमाल रमजानुल मुबारक के अल्लाह ताला के यहां कबूल कर लिए गए, अगर इनके आमाल कबूल कर लिए गए तो इन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, और शुक्रगुजार का यह तरीका नहीं होता। कोई शुक्रगुजार बाजारों में खड़े होकर के इस तरह से हंसते हुए अपने वक्त को पास नहीं कर सकता, वो तो शुक्रिये के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करेगा। तो या तो इनके आमाल मकबूल हो गए, जब इनके आमाल मकबूल हो गए तो इन पर शुक्रिया लाजिम है और शुक्रगुजार को ऐसे नहीं होना चाहिए, या फिर इनके अमल अल्लाह के यहां मकबूल नहीं हुए बल्कि मरदूद हो गए, रद्द कर दिए गए। तो अगर इनके आमाल रद्द कर दिए गए तो ये खसारे में है, नुकसान में है, और घाटे में रह जाने वाला, नुकसान उठाने वाला इस तरीके से बाजारों में और चौक पे खड़े होकर के इस तरीके से अटखेली नहीं कर सकता। तो रमजान के चले जाने के बाद दो ही तरह के लोग हैं, या तो वो जिन पर शुक्रिया वाजिब है कि उनके आमाल अल्लाह के हुजूर कबूल हो गए, या वो हैं दूसरे जिनके आमाल कबूल नहीं हुए, वो खसारे में, वो नुकसान में, उन पर गम और अफसोस के असरात जाहिर होने चाहिए। उन्हें गम में और अफसोस में मुब्तला होकर के अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को पेश करना चाहिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक ताबई हैं, उन्होंने रमजान के अखीर में अपने सामईन को, अपने मानने वालों को चंद चीजों की नसीहत की कि जब रमजान का आखिर आए तो रोजेदारों को, ईमान वालों को चंद चीजें लाजिम कर लेनी चाहिए, और उन चंद चीजों को लाजिम करके किसी भी सूरत में उनसे अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए। वो चंद चीजें क्या है? उसमें सबसे पहली चीज दवा,
بچنے کا مزاج بنایا, نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا مزاج بنایا, دعا میں زیادہ سے زیادہ مصروف کرنے کا مزاج بنایا, عبادت میں اضافے کا مزاج بنایا. یہ جو ایک ماہ اپنے اندر گناہوں سے بچنے, عبادات میں اضافہ کرنے, ذکر و تلاوت میں مصروف رہنے, خواہشات سے رکے رہنے کا مزاج بنایا گیا, یہ یوں نہیں ہے کہ بس ایک مہینے کے لیے ہی یہ تھا. یہ مزاج بنانے کی کوشش ہے,
یہ ایک
عادت بنانے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کا مزاج بنانے کی, ان کی عادت بنانے کی, ان کی طبیعت بنانے کی ایک کوشش, ایک طریقہ. تو جیسے رمضان المبارک میں مزاج بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ طریقہ ودیعت ہوا, تو یہ تمام الطاعات یعنی یہ مزاج رمضان کے بعد بھی اگلے رمضان تک برقرار رہنا چاہیے. عبادت میں اضافہ, ذکر و تلاوت میں مشغولیت, گناہوں سے اجتناب, خواہشات سے دوری, یہ ساری کی ساری چیزیں برقرار رہنی چاہیے. تو سب سے پہلے لازم پکڑ لے تمام الطاعات کو. اور دوسری چیز توبۃ النصوح یعنی خالص اور سچی توبہ اپنے تمام گناہوں سے, اپنی تمام لغزشوں سے, تمام خواہشات سے.
اور پھر
تیسری چیز
اللہ تبارک
و تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں موقع دیا, اس موقع میں ہم نے آپ کی اطاعت کی, آپ کی عبادت کی, ہمیں یہ موقع ملا آپ کی عبادت کرنے کا, آپ کی اطاعت کرنے کا. یہ تین چیزیں لازم پکڑ لیں, اور تین چیزیں لازم پکڑ کر کے
یہ دعا اپنی زبانوں پر رکھے, اللہم سلم الی رمضان, اللہم سلم لنا رمضان, اللہم تقبل منا رمضان. یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے, حضرات صحابہ کرام کے معمول کا یہ حصہ تھے. یہ آج رمضان المبارک کے اس ماہ کا آخری جمعہ تھا جس میں آپ سے رمضان کا جائزہ لینے اور پھر چند چیزوں کو لازم پکڑنے کی گزارش کی گئی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے, اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو پورا کرنے کے بعد میں حسب الحکم ایک اعلان آپ حضرات کے سامنے یہ کرنے والا ہوں کہ آج اس مسجد میں دار العلوم دیوبند کے چندے کا اعلان ہونا ہے. ابھی جمعے کے بعد جو چندہ ہے وہ دار العلوم دیوبند کا. دار العلوم دیوبند آپ کا متعارف اور آپ کا جانا پہچانا ہندوستان کا بہت ہی معروف اور مقبول ادارہ ہے. اس کی خدمات, اس کی تعلیمی کارکردگی اور اس کا پورا کا پورا 150 سالہ رپورٹ کارڈ آپ کے سامنے. 150 سال سے وہ دین اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہا ہے, جس میں ہزاروں حفاظ, ہزاروں علماء, ہزاروں مفتیان کرام اور ہزاروں عربی کے لکھنے والے, جاننے والے مفسرین, محدثین, فقہا سب پیدا ہو کر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں, مختلف ملکوں میں, مختلف شہروں میں دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. دار العلوم دیوبند سے ہی نکلنے والے ہزاروں مدارس ہیں جو چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں. ملک کی آزادی میں دار العلوم کے فرزندان کا بڑا نمایاں رول رہا ہے. تو یہ دار العلوم دیوبند آپ کا معروف, مقبول, جانا پہچانا ادارہ ہے, اس کا اعلان ابھی ہوگا. اسی کے تعلق سے مجھے کہنے کو آپ حضرات سے کہا گیا کہ اس کے لیے آپ خصوصی خیال رکھیں اور اس کے بارے میں پورا تعاون کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.